कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्री चैतन्य चेतामृत कक्षा में। और जैसा कि जो वर्तमान मतलब जो लगातार श्रृंखला में आ रहे हैं तो अवगत होंगे कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं मध्य लीला का छठा अध्याय। अध्याय का शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। डीबीटी के द्वारा जब आप लोगों को जानकारी होगी ऑलरेडी हिंदी में चैतन्य चेतामृत का ये नया संस्करण आया है जो कि पिछले संस्करण से भी ज़्यादा प्रामाणिक है। वो किताब आप लोग जिसके पास भी बुक नहीं है ले सकते हैं। कई बार भक्तों को एक डर बैठा होता है अंदर से कि जब हम भागवतम देखते हैं इतनी बड़ी सीरीज है अपने आप में पूरी लाइब्रेरी है तो लगता है इस जन्म में नहीं पूरी होगी, ये वाली हो सकती है, थोड़ा छोटा है। अभी तेरहवा प्यार जो है ये बोर्ड पे है, बट तेरहवा प्यार में तात्पर्य है छोटा सा और फिर उसके बाद जो है आगे आगे बढ़ेंगे, प्यारों में कोई तात्पर्य नहीं है। तो अभी जैसे आप लोग मतलब देख ही रहे हैं कि जैसे महाप्रभु अभी इस वक्त जगन्नाथपुरी पहुँच चुके हैं और पहुँचने के बाद जो है जगन्नाथ जी के दर्शन करने महाप्रभु जा रहे हैं। तो ये जो श्रृंखला है जगन्नाथ जी के दर्शन करते वक्त क्या हुआ तो वो सारी उसका ब्यौरा है। अधिरूढ़ भाव जार तार ए विकार मनुष्य देह देखी बड़ चमत्कार। अधिरूढ़ भाव जार ए तार ए विकार मनुष्य देह देखी बड़ चमत्कार। मनुष्य देह देखी बड़ चमत्कार। शब्दार्थ अनुवाद ग्रंथात्मक जगद्गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद के अधिरूढ़ भाव, अधिरूढ़ नामक भावावेश जार जिसका तार उनका ए यह विकार विकार मनुष्य मनुष्य की देहे देह में देखी मैं देखता हूँ बड़ो चमत्कार अत्यंत आश्चर्यजनक। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में अधिरूढ़ भाव के असाधारण दिव्य लक्षण प्रकट हो रहे हैं, यह बड़ा आश्चर्यजनक है, भला मनुष्य के शरीर में ये किस तरह संभव है। तात्पर्य श्री रघु गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में अधिरूढ़ भाव या अधिरूढ़ महाभाव की व्याख्या दी है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रघु गोस्वामी का यह उदाहरण उदाहरण देते हैं। आश्रय भक्त की प्रेमानुभूति विषय भगवान के प्रति इतनी भावपूर्ण हो उठती है कि प्रेमी का साहचर्य भोगने के बाद भी भक्त को यह आनंद अपर्याप्त लगता है। ऐसी अवस्था में प्रेमी अपने प्रेम के पात्र को विभिन्न तरीकों से देखता है। भाव का ऐसा विकास अनुराग कहलाता है। जब अनुराग पराकाष्ठा को प्राप्त करके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगता है तो ये भाव कहलाता है। जब शारीरिक लक्षण इतने स्पष्ट नहीं होते तब भी यह भावावेश अनुराग ही कहलाता है, भाव नहीं। भावोल्लास प्रगाढ़ अथवा अवस्था में भावोल्लास प्रगाढ़ अवस्था में महाभाव कहलाता है। महाभाव के लक्षण गोपियों जैसे नित्य पार्षदों के शरीरों में ही दृष्टिगोचर होता है। बहुत टफ परवर्ड है, छोटा सा परवर्ड है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही हैं वेरी हाई टॉपिक्स, समाओ परफेक्ट पढ़ गया, नहीं तो कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, थोड़ा टेक्निकल होगा तो हो सकता है आपको नींद भी आए, कोशिश करेंगे आपको जगाए रखने की तो ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे इसके साथ, क्योंकि एक्चुअली ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी हमारे जाने लायक नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं समझा, मतलब जो मेरे को समझ आता है बहुत ज़्यादा नहीं समझा जा सकता इमीडिएटली, बिकॉज ये तकनीकी बारीकियाँ नहीं है सिर्फ, ये सारा अनुभूति पे बेस्ड है, तो ये सारा इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब समझी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं समझाए, तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषा समझाई जा सकती, ये है और ये नहीं है बस। अब ये ऐसा कैसे होता है और ऐसा कब होता है, क्यों होता है ना, किसके साथ होता है, तो ये ज़्यादा बारीकियाँ जो ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, बिकॉज उसके लिए हमें इसके अंदर होना पड़ेगा, तब हो सकता है हमें, मतलब ऐसे तो जैसे यहाँ पर तात्पर्य में ऑलरेडी बता ही रहे हैं रूप गोस्वामी ने, वैसे इसका एक बहुत मज़ेदार एक निष्कर्ष निकलता है इससे, ये श्लोक जो प्यार है ये सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में बोले सार्वभौम भट्टाचार्य ने विचार किया कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे। अब देखिए मज़ेदार बात यह है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं, जिनको थोड़ा बहुत इसके बारे में अभी जैसे पिछली बार में भी चर्चा हुई होगी, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो मायावादी हैं, मायावादी आचार्य हैं भट्टाचार्य, भट्टा मीन्स भट्टा अपने आप में ही, मतलब जो लोग ब्राह्मण जो शिक्षक होते हैं भट्टाचार्य, सार्वभौम उनको टाइटल मिला था सार्वभौम, एक्चुअली उनका नाम नहीं है, नाम कुछ और है, टाइटल मिला था उनको सार्वभौम, तो मायावादी हैं, तो जो मायावादी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए ये रूढ़ अधिरूढ़ भाव ये अपने आप में ही बहुत, ये टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती एक्चुअली। अधिरूढ़ समाधि योग भागवतम में दो बार वर्णन आते हैं इसका, ग्यारहवें स्कंद में आते हैं, तीसरे स्कंद में अधिरूढ़ समाधि योग बात आती है, बट अदरवाइज ये सब चीज़ें मतलब करना क्या है, जब अंत में जो है हमने सबने जाके जो है भगवान के साथ मिल जाना है, तो क्या अधिरूढ़ और क्या रूढ़ और क्या है ना, बात ही खत्म। तो इस श्लोक से अपने आप में, इस प्यार से अपने आप में एक एक एक, एक बारीक चीज़ जो निकल के आती है कि सार्वभौम भट्टाचार्य के इस बारे में मालूम है कि ऐसी एक चीज़ होती है, और जो कि वो एक आदमी में देख पा रहे हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु है, और उनको इसमें अचंभा भी हो रहा है कि भाई ये आम इंसान में तो, किसी इंसान में तो होना ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब है उनको इस बारे में जानकारी है, इसका मतलब वो ये भी मानते हैं चीज़ होती है, अगर पीछे चलते जाएँ ऐसे ऐसे चीज़ को इसको लेके, नहीं तो मायावाद सिद्धांत बिल्कुल बड़ा साफ सपाट है, अपने आप में कोई वो नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा सिद्धांत है ना, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ना, सो तो अपने आप में बिल्कुल सीधा सिद्धांत, ये सिर्फ भगवान सत्य हैं बाकी सब कुछ मिथ्या है, तो सारे इमोशन सारे जज्बात सारे भाव आदि इत्यादि ये सब जो है मिथ्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये दरअसल इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, और यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है पहली पकड़ ली इस बात को, एक व्यक्ति को देख के, महाप्रभु को देख के कि वो क्या हो रहा है उनके साथ, तो ये जैसे यहाँ पर तात्पर्य में बताया है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये शब्द अपने आप में वही सारा कुछ तकनीकी शब्द हैं, आश्रय विषय मतलब क्या करें इनका, जय श्री राधा अधिकरम भगवान की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय गोविंदा की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो मतलब जैसे अंग्रेजी में आश्रय मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे करके समझा जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि बड़ा सीधा से जैसे मान लीजिए कि मेरे को इन पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है ना। तो गुस्सा मेरे को आ रहा है और इन किस पे आ रहा है, सामने वाले पे आ रहे हैं, इन पे निकलेगा। तो मतलब कि वो जो गुस्सा यानी वो जो जज्बात है, वो जो भाव है, वो जिसके अंदर प्रकट हो रहा है, इस व्यक्ति को कहते हैं आश्रय। आश्रय मतलब कि एक पर्टिकुलर भाव ने, जज्बात ने, सेंटिमेंट ने एक व्यक्ति का आश्रय ग्रहण किया, जिसको उसको आश्रय कहते हैं जिसके अंदर आ रहा है। तो ये ठीक है ना। और जो टारगेट है, जिसके प्रति वो अभिव्यक्त हो रहा है, जिसके प्रति वो फलीभूत हो रहा है, तो उसको कहते हैं विषय। खत्म। तो ये हमेशा चेंज हो सकता है। जब मान लीजिए मतलब भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी पे प्यार आ रहा है, तो भगवान हो गए आश्रय और राधा रानी हो गए विषय। जब राधा रानी को भगवान पे प्यार आ रहा है, तो राधा रानी हो गई आश्रय, भगवान हो गए विषय। तो ऐसे ये चेंज होता रहता है। तो जब आप लोग ये सब ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे, तो ये सब पढ़ के कई बार बंदा फिर लगता है कि बंद कर दो इसको, इनके आश्रय विषय क्या है, दिमाग खराब हो गया, विषय समझ नहीं आ रहा, जाके किसी जाके मन का आश्रय लेते हैं, ठीक है। तो बट दे आर वेरी सिंपल थिंग्स, ये ऐसे है, टारगेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस टाइप से है। तो यहाँ पर जो ये बता रहे हैं तात्पर्य में, कि अधरूढ़ भाव से उनके शरीर में विकार आ रहा है महाप्रभु शरीर में। तो अभी महाप्रभु को किस पे प्यार आ रहा है, बेसिकली भगवान पे, इसीलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ। सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आगे भगवान बता, मतलब यहाँ तात्पर्य में जैसे भक्ति शास्त्र ठाकुर को कोट करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं, उज्ज्वल यही एक ग्रंथ है उज्ज्वल निर्मणि, जिसमें इसके बारे में टेक्निकली डिटेल्स हैं। मतलब भक्ति सामने सिंधु में भी है, पर इतना नहीं है, मतलब बता के छोड़ दिया ये होता है ऐसे। अब ये क्या होता है फिर, ये उज्ज्वल निर्मणि उसके एक एक चैप्टर्स हैं इन पे ऐसे। तो जैसे यहाँ पर अब ये जो है अधिरूढ़ भाव, ये एक प्रकार की चीज़ें, जैसे बेसिक रस होते हैं शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, तो इसमें से सिर्फ माधुर्य के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं, इससे पहले के रसों में ये चीज़ें नहीं आती। माधुर्य में भी कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों में, स्पेसिफिक चरित्रों में जो है इसका विकास होता है। तो मैं क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत सारी चीज़ें सब यहाँ तक समझ आ रहा है, यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, तो फिर आगे चलेंगे, नहीं तो जैसे ये मतलब जैसे यहाँ पर बताया है, देखिए मैं दोबारा धीरे धीरे पढ़ता हूँ, समझो भाव का विकास, एक विकास कैसा विकास है कि जहाँ पर प्रेमी का साहचर्य भोगने के बाद भी भक्त को यह आनंद अपर्याप्त लगता है, यानी कि भगवान के साथ हमें क्या बताएं कि जब हम भगवान के साथ हो लेंगे तो हमें संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। पर यहाँ उससे आई बात कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि जब भगवान के साथ आपका साहचर्य हो जाएगा, उसके बाद भी एक ऐसा स्टेज आ सकता है कि भगवान के साथ रह के भी आपको लग रहा है अभी भी बुरा नहीं पड़ रहा, अभी बुरा नहीं पड़ रहा, नहीं माया की याद नहीं आएगी, जो भगवान की याद ही आएगी। तो ऐसे तो उसमें फिर क्या होता है, फिर आगे आता है, ऐसी अवस्था में प्रेमी अपने प्रेम के पात्र को यानी कि भगवान को विभिन्न तरीकों से देखता है, अलग अलग एंगल से। जैसे एक्चुअली ये सारा कुछ जो है, इसको आप मतलब भौतिक जगत में जो भी प्रेम है या काम है उससे एक टैली करके समझ सकते हैं, क्योंकि मतलब वैसा होता है पर वो नहीं है, कुछ 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 वैसा देखने को मिलता है, कुछ कुछ इस भौतिक जगत में कुछ 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 वैसा देखने को मिलता है। तो विभिन्न तरीकों से मतलब वो देखते हैं, कैसे विभिन्न तरीकों से देखते हैं अभी बताएंगे आपको। तो भाव का ऐसा विकास, इसको अनुराग कहते हैं, अनुराग। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये अनुराग इस वजह से, जैसे मान लीजिए कि वो अपने आप को अलग अलग तरीके से देखता है और उसके वजह से उसके शरीर में विकार आ रहे हैं, यानी कि कैसे अलग अलग चीज़ों में होता है, जैसे डरावना सपना देखते हैं तो जब डरावना सपना देखते अचानक झटके से बंदा उठता है या कई बार चीख के उठता है ना, तो पूरे शरीर से जो पसीना बह रहा होता है, कप कभी छूट रही होती है, रोंगटे खड़े होते हैं, धड़कन बढ़ी हुई होती है, तो कई सारी चीज़ें तब, पर वो तो लेट सोया हुआ था, अभी कुछ भी नहीं है। तो क्या था, सिर्फ मन के धरातल में जो है जब वो घूम रहा था उसमें ऐसी उसने अनुभूति कर ली। उसी प्रकार से जब वो मन में जो है भगवान का इस प्रकार से वो विभिन्न तरीक़ों से चिंतन कर रहा है, तो उससे जो है उसके अगर वो चिंतन इतना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, गहरा हो गया है कि उसके शरीर में जो है वो चीज़ें उसके लक्षण दिखाई देने लग रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब नॉर्मल नहीं हो शरीर, चाहे उससे पसीना तेज़ बह रहा हो, चाहे टेम्परेचर बढ़ गया हो, चाहे आंसू आ रहे हो, यू नो लाइक कैसे भी, या शरीर में यू नो लाइक कभी शरीर में सिकुड़न हो सकती है, तो ऐसे कई प्रकार के संचारी भाव हैं। तो ये चीज़ें जब अगर आती हैं, अगर ये दिख रही हैं दूसरे व्यक्ति को भी दिख रही हैं, तो ऐसे चीज़ को अनुराग कहते हैं। बेसिकली क्या है, टेक्निकल डिटेल कुछ नहीं है, वैसे यू नो लाइक अगर आप कोई बोले कि जब शरीर में कप कभी छूटती है, पसीना बहुत तेज़ बहता है, नब्ज़ पकड़ते हैं, नब्ज़ बहुत तेज दौड़ता है ना, टेम्परेचर आता है, तो उसको क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। अगर बुखार नहीं भी कहते तो भी वो बुखार ही होगा है ना, है ना। अगर बुखार ना कह के आप उसको कुछ भी बोल दोगे, ज्वर बोल देंगे, है ना। तो ठीक है, कोई भी टर्म, मतलब इसे टर्म उसके साथ उस पूरे एक फीलिंग के साथ एक टर्म को मतलब जोड़ा गया है, तो इसको अनुराग कहते हैं। तो ये अनुराग जो है और जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको भाव कहते हैं। तो ऐसे मतलब ये हैं मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा, बट एनी वे, पर ये जब ये भाव और मतलब गहराते हैं, मतलब उतने हाईएस्ट, मतलब जिससे आगे और नहीं प्रैक्टिकली, मतलब जितना अभी हमें इस दृश्य मतलब इस जगत में जो है हमें जो शास्त्र दिए गए हैं उसके मुताबिक जो है इससे ऊपर कुछ नहीं होता, इसे माँ बाप कहते हैं। ये मैं स्टेटमेंट इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि इससे ऊपर कुछ नहीं होता इस जगत के हिसाब से, क्योंकि प्रेम जो अपने आप में अनलिमिटेड है, फिर आध्यात्मिक जगत जो अपने आप में अनलिमिटेड है। तो जितना जो है अभी हमें महाप्रभु ने बताया है यहाँ तक है अभी, बट पता नहीं है महाप्रभु अगर कभी दर्शन में तो और क्या सुनने को मिलेगा, बट यही जो है अभी ऐसा है कि इट इज़ इनएक्सप्लिकेबल, मतलब ये अविचारणीय चीज़ है ये। तो इस महाभाव, तो ये महाभाव जो है इसके अंदर दो प्रकार भेद होते हैं, एक को कहते हैं रूढ़ महाभाव और एक होते हैं अधिरूढ़ महाभाव। तो ये अधिरूढ़ महाभाव ये ऐसे इसकी बात हो रही है, तो जब रूढ़ महाभाव होता है तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जयधर्म में बताते हैं कि ये द्वारका की जो रानियाँ हैं उनके अंदर भी प्रकट होते हैं, तो रूढ़ महाभाव जो लक्षण होते हैं। तो जैसे भगवान से विरह उनको भी होते हैं, मान लीजिए भगवान द्वारका से बाहर गए हैं या द्वारका के अंदर ही हैं उस टाइम, बट दे गेट देम। बट अधिरूढ़ महाभाव जो है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये प्रकार का जो महाभाव है ये राधा रानी जो है इसकी अनुभूति उनको होती है, तो और गोपियों में भी होती है, बट राधा रानी में पूर्ण तरीके से पूर्णतः मतलब 100% मैनिफेस्ट होता है। अब जहाँ तक भगवान का सवाल है, बताया गया है शास्त्रों में कि भगवान भी चैतन्य भागवत में एक तात्पर्य में जो है भक्ति सांसद ठाकुर बताते हैं कि भगवान भी इन भावों को महसूस करते हैं, पर वहाँ तक नहीं करते जहाँ तक गोपियाँ या राधा रानी करती हैं, ऐसा नहीं करते हैं। करते हैं कई बार, क्योंकि इस बारे में ज़्यादा चर्चा होती नहीं, यूजुअली इस बारे में चर्चा होती है कि गोपियों को कैसा लगा, पर भगवान को कुछ लगता है जब भी मतलब यू नो जैसे कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, तो भगवान को भी इसके कुछ मतलब झलक है उनके पास, पर पूरा नहीं, क्योंकि भगवान के पास इसकी कुछ झलकियाँ होती हैं, इसलिए भगवान को पूरा स्वाद आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आते हैं। देखिए जिसको जिसके बारे में पता ही नहीं तो है ना लाइक, तो अगर क्या करना, जैसे कहते हैं ना कि जिस गली जाना नहीं उसका क्या पता पूछना, सीधी बात है। तो अगर उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो वो उस चीज़ को आप लेने की कोशिश, आप उसके पीछे जाओगे ही नहीं। तो क्योंकि भगवान को उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा है, क्योंकि कुछ भगवान ने चखा हुआ है, तो इसीलिए जो है ही वॉन्ट्स द 100% वो फिर महाप्रभु के रूप में क्योंकि जैसे जो जैसे बृहद भागवतम में आता है, ऐसे भगवान जो है जब द्वारका में होते हैं तो द्वारका में वो अब शैया पे अपनी रानियों के साथ है, तो रानियों ने आलिंगन किया और भगवान मूर्छित हो गए, क्योंकि भगवान को लगा कि ये रानियां नहीं हैं, ये गोपियां हैं। सो वो यू नो लाइक तो दैट काइंड ऑफ इमोशन। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक इट्स एन एग्जांपल, मैं अभी लीला नहीं बता रहा इसे, जस्ट एन एग्जांपल कि होता है नहीं होता है, कैसे कहाँ होता है जी, ऐसा होता है। तो ऐसा एग्जांपल्स ऐसे जो है देखने को मिलती हैं चीज़ें। ऐसे कृष्णा बुक में प्रॉपर बताते हैं कि रात को जब भगवान सोए होते हैं, भगवान कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं, रानियाँ सुनती हैं चीज़। तो ये जो है मतलब रूढ़ अधिरूढ़ के कुछ कुछ लक्षण जो है ये हैं बेसिकली। तो अब जो ये अधिरूढ़ महाभाव है, इसके भी और दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स मतलब क्या होते हैं कि ये दो टाइम पे मैनिफेस्ट करते हैं, दो टाइम पे मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे हम जैसे कोई दिन है तो हम दिन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक दिन जिस दिन बारिश होती है, एक दिन जिस दिन बारिश नहीं होती, तो दोनों मामलों में उसको दिन ही बोला जाएगा, बट दिन के अंदर वो किसी दिन बारिश होती किसी दिन नहीं होती। उस टाइप से ये अधिरूढ़ महाभाव में एक दिन मतलब एक टाइम होता है, एक एस्पेक्ट होता है जब भगवान का अपने भक्तों से मिलन होता है, और एक टाइम ऐसा होता है जब भगवान का भक्तों से मिलन नहीं होता। दो ही सूरतें हो सकती हैं, तीसरा कोई सूरत हाल हो नहीं सकती, एक या तो यस या नो। तो ऐसे तो जब भगवान का भक्तों से मिलन होता है तो उसको मादन कहते हैं। मादन का मतलब पागलपन एक टाइप का, और दूसरा मोहन, दूसरे को मोहन कहते हैं जो मतलब बिछड़ने में होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं मादनाख्य महाभाव, मोहनाख्य महाभाव। तो ऐसे करके चीज़ें अधिरूढ़ में ये कैटेगरीज आती हैं। तो अब जैसे अब मादन का मतलब वो क्या हो गया कि भाई जब भगवान से मिलन, जैसे किसी भी प्रेमिका प्रेमिका से मिलन होता है तो जैसे होता है गले लगाना इत्यादि ये सब चीज़ें, और मोहन होता है यानी कि तो उसमें दो और मतलब ये जैसे भागवतम में दिया गया और प्रकार है, इसको कहते हैं उद्घूर्ण। उद्घूर्ण का मतलब होता है कि पागलपन। उद्घूर्ण घूर्णी इसका मतलब होता है मतलब जैसे सर चकराना, तो उद्घूर्ण तो पागलपन, तो आदमी का दिमाग मतलब खिसक जाता है काइंड ऑफ। तो ऐसे तो कितना खिसक जाता है, तो ये इसका एग्जांपल भागवत में आता है। जैसे हम देखते हैं कि जब भगवान जो है रास्ते निकल जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं नहीं मिलते, तो फिर गोपियाँ क्या शुरू करती हैं, भगवान के निकल उतारना शुरू करती हैं। कोई कालिया मर्दन करता है, कोई कुछ करता है, कुछ चढ़ जाता है ऊपर ऐसे करके। सो तो ये चीज़ है, तो ये इसका मतलब उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को भगवान से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। बंदा इतना उस व्यक्ति जैसे 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 मैं बताता हूँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम लोग कई बार किसी को जैसे बात कर रहे होते हैं आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति जो है वो बहुत एनिमेटेड है। मान लीजिए ऐसे कोई भी आप किसी से बात कर, वो देखा वो जब बात करते हैं ना ऐसे ऐसे करके बात करते हैं, और उसकी नकल उतार के बात करते हैं, है ना, और इसने ऐसे बोला या उसका ऐसे करने का तरीका या वो ऐसे चल रहा था ऐसे, तो क्यों दोनों बंदे को हम जानते हैं, पर उस टाइम जब हम वो चीज़ दिखा रहे होते हैं उस बंदे के फॉर्म में होते हैं, है ना, उस बंदे के फॉर्म में होते हैं कि वो ऐसा बोलता है ऐसा। जैसे कई बार फिल्म स्टार्स की ना नकल भी नहीं उतारते ऐसे, है ना, जैसे पहले होता था कईयों की नकल उतारते थे, है ना, तो जैसे सुन करके ऐसे कैसे कुछ किया, तो इसका मतलब थोड़ी मैं धर्म ने अंदर बन गया, बट आई एम कमिंग इन टू दैट फॉर्म ऑफ, तो वो तो एट फॉर दैट मोमेंट उस क्षण में मैं उस चरित्र से जो है हाँ मतलब मैं अपनी पहचान कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जो है गोपी, इसलिए मैंने बताया ना जैसे इस भौतिक जगत में मिल जाएंगे सारे एग्जांपल वैसे, पर ये क्या है कि उल्टे भी नहीं है, विकृत है और वो सटीक है वो चीज़ है। तो ये एक होता है जब भगवान के साथ वो स्टेप से थोड़ा पागलपन टाइप का उनके अंदर छा जाता है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं चित्रजल। चित्रजल का मतलब है उलझल बकवास करना, कुछ भी किसी से भी बोलना शुरू कर देना, कुछ करना। जैसे भागवतम में वो भ्रमर गीत आता है 47 चैप्टर में दशम स्कंद, तो वो जो भ्रमर गीत तो वो है, जैसे राधा रानी अजीब ही एक उसमें और बहुत ज़्यादा हो गया नहीं एक्चुअली टेक्निकल में क्या करें सब्जेक्ट ऐसे ही है टेक्निकल डिटेल्स हैं तो ये अलग अलग तरीके की जो हैं ये इसके अंदर वैचित्र्यां होती हैं मतलब वैराइटीज़ कह लीजिए आप इसको विचित्रता इसके अंदर की विचित्रता होती है मुझे लगता है आगे बढ़ देखिए बेसिकली जैसे आचार्यगण बताते हैं अगर हम भक्तिदास सरस्वती ठाकुर वैसे यही बताते हैं इसमें जैसे उसमें प्राकृतिक रस शदूषणी नाम से ग्रंथ है उनका है तो उसमें वो बताते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं जैसे लिखी गई हैं उन्होंने ही तात्पर्य दिए ऐसा है बट स्टिल एट द सेम टाइम वो साथ में ही बता रहे हैं कि मतलब लिखावट में बोल के जितना समझाया जा सकता है जिस हद तक जाया जा सकता है उस हद तक कोशिश कर ली है बाकी जो है जो समझ आना है जो होना है वो हरे कृष्ण महामंत्र से होना है अब इसके आगे जो भी होना है जितना हो सकता था मतलब ह्यूमनली लाइक जैसे कहते हैं ना कि वर्ड्स आर लिमिटेड तो जितना हो सकता था उतना जो है कोशिश करा है आचार्यों ने पर इसके आगे जो है क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंशियल है ये तो वो हरे कृष्ण महामंत्र के जब से ही जो है ये चीज़ जो है आएगी तो कहते हैं कि जो भाग्यवान है तो उनको प्राप्त होगा ये वो चीज़ें समझ सकते हैं पा सकते हैं तो वो कहने कि जितना मतलब बता सकते हैं पाठ तात्पर्य में जितना लिख सकते हैं इतना मतलब कर दिया मतलब जितना हो सकता है जितना ह्यूमनली मतलब पॉसिबल है पर इसके आगे जो है हरे कृष्ण महामंत्र करके उसकी अनुभूति वो तभी आएगा हर चीज़ बयान नहीं करी जा सकती तो ये चीज़ है एक्चुअली बहुत सिंपल सा है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर का जो है आसक्तियाँ जाने के बाद जो है ये चीज़ें और क्लियर मतलब जितना जितना ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं कि एक 100 मैच जैसे ही आप मीट करोगे इमिजिएटली सब समझ आ जाएगा जितना जितना उसके तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना समझ आएगा ये वो नहीं है डिजिटल नहीं है ऑन ऑफ नहीं है या तो समझ आएगा या नहीं समझ आएगा ऐसा नहीं है जितना जितना आदमी जो है आगे बढ़ता जाएगा एडवांस करता जाएगा उतना उतना समझ आएगा तो उस टाइप से और इसकी एक खासियत क्या है कि अगर दो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से एक स्तर पे मान लीजिए दो भक्त हैं जो भाव के स्तर पे हैं या मान लीजिए कोई दोनों भक्त रुचि के स्तर पे तब पे भी ये जो विषय वस्तु है इसका सैद्धांतिक मतलब अंडरस्टैंडिंग सैद्धांतिक समझ तो एक जैसी होगी पर फिर भी सैद्धांतिक समझ के बावजूद इसमें किसी भक्त को अपने टेस्ट के हिसाब से और किसी भक्त को अपने रुचि के हिसाब से समझ आएगा तो यहाँ पर जो है विविधता भी है समानता ये है कि सिद्धांत क्या है ये दोनों के लिए समान रूप से ओके जैसे है ना जैसे कहते हैं भाई इसको ग्लास कहते हैं वो सबके लिए सिद्धांत है ना ऐसे पर फिर भी इसकी विचित्रता मतलब अब कोई ग्लास को कैसे इस्तेमाल करता है जैसे कोई ऊपर से पानी पीता है कोई चिपका के पीता है कुछ है, तो इसको विविधता कह सकते हैं है ना तो वो विविधता जो है सब भक्तों में अलग अलग प्रकार से वो उसका आस्वादन कर सकते हैं इसीलिए देखते हैं कि अगर कोई दो आचार्य मान लीजिए एक ही स्तर पे हैं तभी भी जब वो एक श्लोक की व्याख्या दे रहे होंगे या ऐसे एक घटना की व्याख्या दे रहे होंगे उसमें वैरायटी होगी वो इसलिए नहीं वैरायटी कि भाई इसने ये वाला लिख दिया अरे यार छोड़ा नहीं कुछ मेरे लिखने के लिए अब मैं कुछ नया बताता हूँ ऐसा नहीं है वो उसको ऐसे ही देख रहा है वो इसको ऐसे ही देख रहा है और दोनों ठीक अब आगे देखते हैं एतो चिंती भट्टाचार्य आशेन घोषिया नित्यानंद सिंगो दारे नित्यानंदो आदि सिंगो दारे मिली लो आशिया जब भट्टाचार्य अपने घर में इस प्रकार विचार कर रहे थे तो ये वो क्या हुआ था बेसिकली महाप्रभु को उन्होंने वहाँ देखा था और फिर बोल के आ गए थे भाई इनको उठा के ले आओ तो जगन्नाथपुरी मंदिर में। सो क्या हुआ था बेसिकली, पहले हुआ था कि जैसे ही महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो भागे जगन्नाथ जी की तरफ उनका आलिंगन करने के लिए, पर ज़्यादा दौड़ नहीं पाए, आराम से गिर गए और ये अवस्था हाँ थी। तब नित्यानंद प्रभु, जब भट्टाचार्य ने इस प्रकार से घर पे विचार कर रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त मंदिर के सिंह द्वार यानी प्रवेश द्वार के निकट पहुंचे। ताहा सुने लोके कहे अनन्नो बा एक एक्शन नशी आशी देखी जगन्नाथ। वहां पर इन भक्तों ने लोगों को एक सन्यासी के बारे में बात करते सुना जो जगन्नाथपुरी आए थे और जिसने जगन्नाथ विग्रह के दर्शन किए थे। मतलब ऐसे पकड़ लिया उन्होंने क्योंकि अनोखा कुछ ऐसा हुआ है। मूर्छित होइलो चेतन ना हो शरीरे सार्वभौम लोइया गेलो अपनार घरे। लोग कह रहे थे कि सन्यासी जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करते करने पर मूर्छित हो गए क्योंकि उनको होश नहीं आया, इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। तो उसी हालत में बेहोशी की हालत में जो है महाप्रभु को वो उठा के, तो ये सब लोग थे तो उनको उठा के ले गए थे अपने घर। तब सुनी जानी लो ये महाप्रभु कार्य है न काले आइलो ताहा गोपीनाथ आचार्य। यह सुनकर भक्तगण समझ गए कि वे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। तभी श्री गोपीनाथ आचार्य वहाँ आए। तो ये अब मतलब एक्चुअली क्या हुआ था कि वो पार्टी जो है वो पीछे रह गए थे और वो पार्टी आगे चले गए। क्यों पीछे आगे हो गया था, हुआ गया था, क्यों वो अलग अलग हो गए थे, महाप्रभु क्यों पहले चले गए थे, हाँ गुस्से में। तो पहले इकट्ठे चल रहे थे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और ये तीनों पार्षद हैं तो, पर उस वक्त जो है फिर उन्होंने क्या किया, वो महाप्रभु उनको मौका मिला नित्यानंद प्रभु का तो उन्होंने महाप्रभु के एक दंड को तोड़ के तीन टुकड़ा करके फेंक दिया। तो फिर महाप्रभु ने जब बाद में आके पूछा कि भाई कहाँ है दंड, गए तो टूट गया वो, तो दंड कैसे टूट गया, तो ऐसे पता नहीं क्या बोला कि मैं उसके ऊपर गिर गया, ऐसा कुछ हुआ था शायद, मैं उसके ऊपर गिर गया क्या, वो तीन टुकड़े टूट गए। महाप्रभु समझ गए हाँ ठीक है भाई, अब ये ऐसा है, अभी आप आराम से आओ, मैं चला, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। तो फिर महाप्रभु जो है जल्दी 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 दौड़ते दौड़ते जो है यहाँ जगन्नाथपुरी और जब आए और उसके बाद ऐसा होता है पिछले पीछे पीछे भक्त लोग आ गए। नदी अन्य पासी विशारदेर जावाता सार्वभौम भक्त थे हो पुत्र तत्व ज्ञाता महाप्रभुर भक्त थे हो प्रभु तत्व ज्ञाता। तो गोपीनाथ आचार्य नदिया के निवासी थे, विशारद के दामाद, विशारद कौन हुए बोला इसमें सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ये मतलब वन ऑफ द नेम्स ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम के भट्टाचार्य के एक और नाम विशारद। तो के दामाद, क्योंकि विशारद का मतलब होता है पंडित, विशारद विशारद मीन्स एक्सपर्ट विशारद, अभी भी मतलब जैसे म्यूजिक के फील्ड में जो है वो टाइटल देते संगीत विशारद एक्सपर्ट वैसे। तो दामाद तथा चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, वे महाप्रभु की वास्तविक स्थिति वास्तविक पहचान को जानते थे। तो महाप्रभु की वास्तविक पहचान को जानते थे, तात्पर्य छोटा सा है, महेश्वर विशारद निमालम चक्रपति के सहपाठी थे, वे नदिया जिले के विद्यानगर ग्राम में रहने वाले थे और उनके दो पुत्र थे मधुसूदन वाचस्पति तथा वासुदेव सार्वभौम, उनके दामाद गोपीनाथ आचार्य। तो मतलब ये दो विद्या वाचस्पति, एक मधुसूदन और सार्वभौम भट्टाचार्य। एक्चुअली मतलब हिस्ट्री ये है कि वो जगन्नाथपुरी क्यों आए थे, क्योंकि जब मतलब बंगाल में जो है ये मतलब महाप्रभु के आविर्भाव से पहले की बात है, तो ये लोग जब वहाँ पर मतलब गॉड देश में बंगाल में थे तो जब मुसलमानों का हमला हुआ वहाँ पर, जब मुसलमानों का राज्य आधिपत्य हो गया तो फिर जो है ये लोग वहाँ से भागकर पूरी आ गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि कई लोग उस वक्त संख्या 19 मुकुंद सहित पूर्वे आछे परिचय मुकुंद देखी यथार हईल विषय। गोपीनाथ आचार्य पहले से मुकुंद दत्त को जानते थे, मुकुंद दत्त उनमें से एक मुकुंद दत्त के साथ। तो अतएव जब उन्होंने मुकुंद दत्त को जगन्नाथपुरी में देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो हैरान होना अचानक, आप यहाँ कैसे? मुकुंद ताहारे देखी कोई लो नमस्कार, तेहवालिंगिया पूछे प्रभु समाचार। जब मुकुंद गोपीनाथ आचार्य से मिले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार किया। उनका आलिंगन करने के बाद गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ है, तो जैसे उन्होंने वो मुकुंद से जो है गोपीनाथ आचार्य मिले तो मुकुंद ने क्या किया, पहले क्या किया, पहले नमस्कार किया फिर आलिंगन किया, यानी कि भक्त जो है वो बराबर कहेंगे। तो जब बराबर के भक्त मिलते हैं तो पहले नमस्कार करते हैं और फिर आलिंगन करते हैं। तो कई बार पूछते हैं तो बराबर में क्या करना चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए फिर गले लगाना चाहिए सर। तो मुकुंद कहे प्रभु यहाँ होइलो आगमने, आमी सब आशी आछी महाप्रभु शाने। मुकुंद दत्त ने उत्तर दिया, महाप्रभु तो पहले ही यहाँ आ चुके हैं, हम उन्हीं के साथ आए हैं। तो क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं उनको। नित्यानंद गोसाई के आचार्य को ही लो नमस्कार, ताबे में लिख पूछे प्रभु बार था बार बार। गोपीनाथ आचार्य ने श्री नित्यानंद प्रभु को देखते ही उन्हें प्रणाम किया। इस तरह सभी भक्तों से मिलकर उन्होंने बारम्बार श्री चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। अब ये चल रहा है, मतलब मुकुंद कहे महाप्रभु शन्ना शकोरिया, नीला चले आइलो संगे आमा सब लोहिया। देखिए ये सबसे पहला न्यूज़ है, क्योंकि अभी जगन्नाथपुरी में ये न्यूज़ पहुंचा नहीं है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, यहाँ किसी को नहीं पता। यहाँ पर जो भी भक्त हैं महाप्रभु के, उनको वो महाप्रभु पुराने वाले महाप्रभु पता है, बड़े बड़े बाल महाप्रभु है ना, व्यस्त। तो ऐसे तो मुकुंद दत्त ने आगे कहा, संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए हैं और हम सबको अपने साथ लाए हैं। आमा शाबा छाड़ी आगे गैला दौर शाने, आम शब पाछे आई लतारो अन बिशाने। महाप्रभु हमारे साथ छोड़कर आगे आगे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले आए, हम सब अभी आए हैं और हम अब उन्हीं की खोज में हैं। तो क्योंकि है ना, क्योंकि इतना बड़ा जगन्नाथ मंदिर आप लोग जो लोग गए होंगे तो इतनी भीड़ होती है वहाँ। अनन्न लोकेर मुखे जे कथा सुनेला, सार्वभौम गृह प्रभु अनुमान कोई लो। सब लोगों की बातों से हमने ये अनुमान लगाया है कि महाप्रभु अब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में है। तो ये चल रहा है, ईश्वर दर्शन प्रभु प्रेम अचेतन, सार्वभौम लोहिया गया लो आपन भवन। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके भाव विभोर हो गए और अचेत हो गए, और सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें उसी अवस्था में अपने घर ले गए। तुम्हारो मिलाने जबे आमर होइल मन, दैव शेष खाने पाइलो तुम्हार दर्शन। जब मैं आपसे मिलने की सोच रहा था, अकस्मात ही हमारी भेंट संयोग से हो गई। तो कौन कह रही है? ये कह रहे मुकुंद दत्त। क्यों? क्योंकि मुकुंद दत्त जानते हैं उनको पहले से। क्या जानते हैं उनको? जानने का मतलब उनको ये भी पता है कि सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद है। तो जब उनको ये पता लगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य, तो फिर नेचुरली दिमाग चलेगा कि मैं किसको जानता हूँ उनसे जान पहचान का। तो अरे तो इनके बारे में सोच ही रहते और ये आ गए उस पर। चलो सब जाई सार्वभौम भवन, प्रभु देखी पाछे कोरी बहु ईश्वर दर्शन। तो अब देखिए छोटी सी चीज है, चलिए पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर चलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करें, बाद में हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने आएंगे। उल्टा है यहाँ पर, पहले हम महाप्रभु का दर्शन करने चलते हैं और फिर बाद में हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने। और ये ऐसा ही जो है बार बार ऐसा होता है, जस्ट लाइक जब ये तो अभी महाप्रभु आए हैं जगन्नाथपुरी और फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह जाएंगे। तो जब महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में रहेंगे तो अब महाप्रभु से मिलने जब सब भक्त आएंगे बंगाल से, हर साल आते थे, मतलब 6 साल छोड़ के 6 साल महाप्रभु टूर पे थे साउथ इंडिया, तो उसके अलावा तो जब आते थे तो तब भी ऐसा होता था। तो जब पहली बार जब इन्होंने देखा था वो राजा को, प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र, उन्होंने जब पहली बार देखा तो वो भी हैरान हो गए थे। वो देख रहे थे ऊपर से अपनी छत से कि महाप्रभु के सब भक्त जो है नाचते हुए कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने पूछा फिर ऊपर से खड़े होकर कि बताइए ये कौन है, ये कौन है। गोपीनाथ आचार्य से पूछा और उन्होंने बताया कि ये है, ऐसे ऐसे सबके सबका परिचय दिया। तो उन्होंने देखा कि वो सब पूरी टोली जो है आई जगन्नाथ मंदिर के सामने, मेन गेट से मुड़ गई। अरे अंदर नहीं गए लोग, ये जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने आए? कहते नहीं, ये अभी वाले महाप्रभु के दर्शन करने जाएंगे। फिर महाप्रभु के दर्शन करेंगे, फिर महाप्रभु इनको प्रसाद खिलाएंगे, उसके बाद ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएंगे। तो बड़ा मतलब अपने आप में जो है, क्योंकि बहुत मतलब नेचुरल है कि जैसे मतलब शास्त्रों का विधान है कि जब आप जैसे ही आप किसी धाम में जाओ, धाम में जाने का सबसे पहले करते हुए क्या है, धाम में जाइए, मुंडन कराइए अगर बाल बड़े हैं तो, उसके बाद स्नान कीजिए वहाँ के जो भी नदी है तालाब जो भी है वहाँ पर, उसके बाद जो है ब्राह्मण को दर्शन दीजिए और आप दर्शन करने जाइए, उसके बाद अब आपने जो करना है करिए, जिससे मिलना जुलना जो मर्जी करना है आपने। पर यहाँ पर क्या है कि सीधा अभी कुछ नहीं, अभी सबसे पहले हम तो महाप्रभु के दर्शन करने जाएंगे। तो ये लोग भी ऐसे तो सबसे पहले महाप्रभु के दर्शन करने ऐसे करके तो ऐ तो सुनी गोपीनाथ स्वाबारे लोहिया सार्वभौम घरे गेलो हर्षित होइया। यह सुनकर हर्षित मन से गोपीनाथ आचार्य तुरंत ही सभी भक्तों को साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पहुंचे। तो बस यहीं पर विराम देंगे। तो ये 30वें प्यार से जो है इसमें कभी आगे तात्पर्य नहीं है, काफ़ी प्यारों में तकरीबन 48वें प्यार तक कोई तात्पर्य नहीं है। तो आगे यहाँ से आगे चलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चेतामृत की, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की, अस्तित्व भक्तवृंद की, आनंदे।